قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ذرا ذرا سی بات پہ انسان ناراض ہو جاتے ہیں، ہم جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جی اس نے ہماری عزت نہیں کی، فلاں نے ہمیں بے عزت کر دیا، فلاں نے ہمیں رسوا کر دیا، ہماری جی عزت خاک میں مل گئی، ہماری عزت کہاں رہی۔ سو ہم بڑے پوزیسو ہو جاتے ہیں اپنی عزت کو لے کر، اپنے وقار، اپنے رسپیکٹ اور آنر کو لے کر۔ شکایت رہتی ہے کہ دوسرے لوگ ہماری قوم کی عزت نہیں کرتے، ہمیں بے عزت کرتے، ہمیں رسوا کرتے ہیں۔ سو عزت کا معاملہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عزت بے عزتی کا معاملہ بن گیا ہے، اور بات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے بہت دور چلی جاتی ہے۔ ہم آج خدا کے کلام میں سے اسی موضوع پہ تعلیم پائیں گے، عزت اور بے عزتی، آنر اینڈ انسلٹ۔ کون عزت کے لائق ہے؟ Who is worthy of honor and respect؟ بائبل بتاتی ہے خدا عزت کے لائق ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا اور معتبر ہے۔ سو یہ خدا کا حق ہے، اس کی عزت کی جائے۔ خدا عزت کے لائق ہے اور ماں باپ عزت کے لائق ہے۔ 10 حکموں میں خدا کے بارے میں احکام کے فوراً بعد ماں باپ کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور یہ دہرایا گیا ہے نئے عہد نامے میں بھی، حکمران عزت کے لائق ہیں۔ اکثر ہم گورنمنٹ کی، حکومت کی عزت نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں ناحق باتیں بھی کہتے ہیں، غلط باتیں بھی کہتے ہیں، اور رسوائی کی باتیں بھی ان کی بابت کہتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ حکمران عزت کے لائق ہیں، بزرگ لوگ اور بیوہ عورتیں عزت کے لائق ہیں۔ بڑی عمر کے ہیں، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی بزرگ کو بڑی عمر کا تمہارے پاس آ جائے، تم اسے دیکھ لو تو عزت سے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک جیسچر ہے رسپیکٹ کا، ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مرد ہے، عورت ہے، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، آپ اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں۔ اور بالخصوص یہ کہا گیا ہے کہ بیوہ عورتیں جو واقعی بیوہ ہیں، یعنی جن کے شوہر ان کے سروں پہ نہیں رہے، وہ اب اکیلی رہ گئی ہیں، ان کی عزت کی جائے، انہیں بے عزت نہ کریں، انہیں رسوا نہ کریں، ان کی عزت کا خیال بھی رکھا جائے تاکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ باس، آقا، مالک، جو ہم سے سپیریئر ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے کام کی جگہ پر، ہمارے آفس میں، ہماری کمپنی میں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، یا جن لوگوں کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ عزت کے لائق ہیں، ان کی عزت کی جائے، نہ کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کی جائیں۔ جیون ساتھی عزت کے لائق ہے۔ یہ تصور کے مرد زیادہ عزت کے لائق ہے اور بیوی کو جس طرح سے مرضی چاہے وہ ٹریٹ کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، اور ایک دوسرے کی عزت اس طرح سے سنبھالیں کہ کوئی انہیں رسوا نہ کر سکے، کوئی انہیں بے عزت نہ کر سکے۔ جب خود ہی ہم ایک دوسرے کی بے عزتی شروع کر دیں گے تو پھر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی بے عزتی کریں گے۔ دینی اور روحانی پیشوا عزت کے لائق ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم خدا کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں، ہم کیسے خدا کو جان سکتے ہیں، اور ہم اپنے ایمان میں کیسے آگے بڑھ سکتے اور ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ عزت کے لائق ہیں، اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو تم میں تعلیم دینے والے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں، دے آر وردی آف ڈبل آنر۔ تو باقیوں کی ایک ایک بار عزت لکھا ہوا ہے، لیکن جو روحانی استاد تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے دو چند عزت کی بابت لکھا گیا ہے۔ خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے والے عزت کے لائق ہیں، ضروری نہیں کہ وہ خود روحانی یا دینی پیشوا یا رہنما ہے۔ लेकिन वो खुदा के लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं, वो उनको असिस्ट करने वाले लोग हैं, वो कलीसिया में खिदमत करने वाले लोग हैं जो खुदा की कलीसिया की खिदमत करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की है। छोटे से छोटा काम है कलीसिया में, दरवाजों पे खड़े रहना कि लोगों को आने जाने में आसानी हो, या चटाइयां और कालीन और कारपेट्स बिछाना, कुर्सियां लगाना, सफाई का इंतजाम करना, या खाने पीने का इंतजाम करना, या इबादत के लिए इंतजाम करना, सारा ऑपरेटस लगाना, कोई भी किसी भी तरह का काम है, जो लोग खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं वो भी इज्जत के लायक हैं। और हर इंसान इज्जत के लायक है क्योंकि वो खुदा की सूरत और शबीह पर है और मसीह ने उसके लिए जान दी है। जिसको मसीह ने कीमत वाला कर दिया है, हम उसे बेकद्र क्यों कर सकते हैं? कोई पीछे नहीं छोड़ा गया कि एक मखसूस तबके की इज्जत नहीं करनी, सबकी इज्जत की जाए, भले उसका कोई पेशा है, भले उसका कोई मजहब है, भले उसका कोई भी खानदान या कोई भी नेशनैलिटी, उस वो किसी भी मुल्क इलाके जुबान से ताल्लुक रखता है, सबकी इज्जत की जानी चाहिए। और दौलत इज्जत का मेयार नहीं है। ये मत समझे कि जो बहुत अमीर हैं हम उनकी इज्जत करें, और जो जरा छोटे लेवल के लोग हैं, जिनके काम छोटे लगते हैं हमें, जिनके पास दौलत कम है, जिनकी हैसियत कम है, हम उनको बेइज्जत कर लें, ऐसा नहीं है। हर इंसान, चाहे वो सफाई वाला काम कर रहा है, वो हमसे अफजल हैं क्योंकि वो खुदा की बनाई जमीन को साफ कर रहे हैं, हम गंद फैलाते हैं और वो साफ करते हैं ताकि फिर से वो जगह हमारे रहने के काबिल हो जाए। जरा सोचिए, अगर ऐसे लोग काम करना छोड़ दें तो हम अपने ही घरों में ना रह सकें, हम अपनी ही गली मोहल्ले में ना रह सकें। इज्जत कौन देता है? हम मांगते हैं लोगों से, हम डिमांड करते हैं हमारी इज्जत की जाए, लेकिन इज्जत देता कौन है? खुदा का कलाम यह सिखाता है कि खुदा इज्जत बख्शता है। खुदा जिसको इज्जत दे, कोई उसको बेइज्जत नहीं कर सकता। खुदा जिसको चाहे उसको इज्जत अता करता है। खुदा हमसे पूछ के या हमारे पैमानों, हमारे स्टैंडर्ड्स में इज्जत नहीं देता। खुदा का अपना मयार है, खुदा के अपने स्टैंडर्ड्स और मेरिट्स हैं इज्जत देने के। और खुदा सिर्फ किसी एक मखसूस कौम, या हम अपने आप को कहें कि जी खुदा सिर्फ बाइबल पर ईमान रखने वाले मसीहियों को इज्जत देता है, ऐसा नहीं है। बाइबल ही यह बताती है कि खुदा ने गैर कौमों में से भी लोगों को इज्जत दी है। खुदा ने उन्हें इज्जत दी, उन्हें बादशाहतें दी, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत कायम की। हुक्मरान इज्जत देते हैं, खुदा हुक्मरान मुकरर करता है ताकि वो जमीन पर अच्छा काम करने वालों की इज्जत करे। आसर की किताब में मर्द की के हवाले से लिखा है कि बादशाह ने उसे इज्जत दी क्योंकि मर्द की ने बादशाह की जान बचाई थी। हमारे मुल्कों में भी हुकूमतें इज्जत देती हैं अच्छे शहरियों को जो बहुत अच्छा काम करते हैं अपने अपने फील्ड में। हुकूमतें उन्हें एजाजात देती है, ऑनर करते हैं, उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, बड़े टाइटल्स दिए जाते हैं। एक तरीका होता है हुक्मरानों की तरफ से इज्जत देने का। हर एक शख्स को चाहिए कि दूसरों को इज्जत दे। मेरी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में जिससे मेरा वास्ता पड़ता है, मैं उसकी इज्जत करूं, मैं उसको इज्जत दूं। क्योंकि अगर मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, तो फिर मेरा भी ये फर्ज है कि मैं दूसरों को इज्जत दूं। और हमें आदमियों से नहीं, खुदा से मिलने वाली इज्जत की आरजू होनी चाहिए। आदमी इज्जत देते हैं और फिर कभी कभी वो इज्जत वापस भी ले लेते हैं। हमें इंसानों से नहीं, खुदा से इज्जत पाने की आरजू होनी चाहिए। क्योंकि खुदा जो इज्जत अता करता है वो दायमी रहती है, कोई इंसान उसे छीन नहीं सकता। बाइबल में जिन इंसानों को खुदा ने इज्जत अता कर दी है, पूरी दुनिया के इंसान भी मिलकर उनकी इज्जत घटा नहीं सकते। خداوند یسوع مسیح نے اپنے مخالفین کی بابت کہا کہ تم انسانوں سے عزت چاہتے ہو، خدا سے عزت پانا نہیں چاہتے، اس لیے میری مخالفت کرتے ہو۔ ایسے بھی یہودی پڑھے لکھے اہل ایمان، خود کو سمجھنے والے، بڑے سمجھدار اور بڑے رتبوں والے لوگ تھے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے تھے لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ انہیں برا سمجھے، لوگ ان کے بارے میں یہ سوچے کہ دیکھو یہ اپنا ایمان چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ تو ایسوں کی بابت بھی کہا گیا کہ وہ انسانوں سے عزت چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسیح کا اقرار نہ کیا، انہوں نے خدا سے عزت پانا نہ سوچا، انسانوں سے ملنے والی عزت کی فکر کی۔ ہم زندگی میں بہت دفعہ ہم یہی کام کرتے ہیں، انسانوں سے عزت مل جائے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے دقیانوسی لوگ ہیں، دے آر اولڈ فیشنڈ پیپل، ان کو کیا پڑی ایسے اچھے کام کرنے کی۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ سوچو کہ آپ کا کوئی کام، آپ کی کوئی بات خدا کی طرف سے عزت کا باعث ہے تو اسے ضرور کریں۔ یہ مت سوچیں کہ انسان اس کو دیکھ کے ہماری بے عزتی کریں گے، یہ سوچیں خدا عزت کرے گا یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں بے عزتی کی، کون بے عزت کرتا ہے؟ Who insults؟ دشمن بے عزت کرتا ہے، ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں شریکہ جسے کہتے ہیں، جن کے بیچ ہم رہتے ہیں، ہم انہیں ہی اپنے دشمن سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بے عزت کریں، ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں اور ہم ان کے دشمن بنے بھی ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جینونلی ہمارے دشمن ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو چکی ہوتی ہے کہ جن سے ہماری مخالفت، ہماری دشمنی، اینمیٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں بے عزت کرتے ہیں۔ ساؤل کو فکر لگی ہوئی تھی، ساؤل بادشاہ جنگ میں زخمی ہو گیا، جان نہیں نکل رہی، اپنے خادم سے کہا، اپنے سپاہی سے کہ مجھے مار دے، میری مدد کر، میں مر جاؤں، ایسا نہ ہو کہ دشمن فلسطی جو نامختون ہیں وہ آ کر مجھ پر حملہ آور ہوں اور مجھے بے عزت کریں۔ دشمنوں سے عزت کے چلے جانے کا ڈر رہتا ہے، دشمن سچ میں بے عزت کرتے ہیں۔ دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت ہو، آپ کا اونچا نام ہو۔ آئندہ یاد رکھنا، جو آپ کو بے عزت کرے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ دشمن ہے، اور آپ جس کو بے عزت کر رہے ہیں، جس کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ میں تیرا دشمن ہوں، کیونکہ دشمن بے عزتی کرتے ہیں۔ ظالم کمزوروں کو بے عزت کرتے ہیں، جن کے پاس باغ کا ٹھیکہ تھا، انہوں نے پورے باغ پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے، اپنی جاگیر بنانے کے لیے مالک کے بھیجے ہوئے نوکر کو ظلم کا نشانہ بنایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسے مارا پیٹا اور بے عزت کیا۔ ظالم لوگ جو دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں وہ۔ کسی کو اکیلا دیکھا، کسی کو کمزور دیکھا، کسی کو ایسے لمحے میں دیکھا کہ جب وہ رسپونڈ نہیں کر سکتا، جب وہ جواب نہیں دے سکتا آپ کو، اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، یہ ظالموں کا کام ہے۔ دولت مند غریبوں کو بے عزت کرتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم غریبوں کو بے عزت کرتے ہو جب وہ تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، تمہاری ضیافتوں میں آئیں، تمہارے گھروں میں آئیں، یا کسی تقریب میں اکٹھے ہو جائیں، تو تم غریبوں کو تو بے عزت کر دیتے ہو، اور امیروں کی تم بڑی ان کی خدمتیں کرتے ہو، انہیں اچھی جگہ دیتے ہو، ان کی بڑی عزت کرتے ہو۔ امیر لوگ غریبوں کی بے عزتی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، انہیں ٹانٹ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، बहुत गलत है। खुदा कभी भी किसी को भी दौलतमंद बना सकता है और किसी को भी खुदा गरीब कर सकता है, क्योंकि दौलत खुदा की तरफ से है। सो दौलत की वजह से आप किसी गरीब को बेइज्जत ना करें, क्योंकि बहुत थोड़ा वक्त लगता है हालात के बदलने में। बेईमान लोग ईमानदारों को बेइज्जत करते रहे, जो मसीहियों को बुरा समझते थे वो मसीहियों को बेइज्जत करते, जलील करते हैं। और रसूलों ने ये बेइज्जती बर्दाश्त की, बेईमानों के हाथ से, गैर ईमानदारों के हाथ से ये बेइज्जती कबूल की गई। बल्कि यहां तक रसूलों ने कहा कि शुक्र है कि हम यस्सू के नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। सो अगर बेईमान लोग, जो आपका ईमान समझ नहीं सकते, जो आपके ईमान से वाकिफ नहीं, जो खुदा की नजर में आपकी हैसियत और कीमत और कद्र से वाकिफ नहीं, अगर वो आपको बेइज्जत करें, आपके बारे में ना हक बातें कहें, आपके बारे में नीच और गलीज जुबान इस्तेमाल करें और रवैये अपनाएं, तो परेशान नहीं होना कि शायद हम अकेले हैं जिसके साथ ये हो रहा, हमसे पहले नबी और रसूल ये बर्दाश्त कर चुके हैं। खुदा की नाफरमानी करने वाले लोग, जो खुदा का हुक्म नहीं मानते, जो खुदा का कलाम कबूल नहीं करते, खुदा की बातों पर ईमान नहीं लाते और जो खुदा कहे वो काम नहीं करते, वो खुदा को बेइज्जत करते हैं। सो गौर कीजिएगा, मुझ समेत जो कोई भी खुदा का नाफरमान होता है, जो खुदा का हुक्म तोड़ता है, वो दरअसल खुदा को बेइज्जत करता है। खुदा को रद्द करने वाले लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं। जिन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, जिन्होंने खुदा को कबूल ना किया, जिन्होंने खुदा की बातें कबूल ना की, उनमें यह खसलत पैदा हो जाती है कि वो दूसरों को बेइज्जत करते हैं। खुदा को जिन लोगों ने रद्द कर दिया, फिर खुदा उन्हें छोड़ देता है कि ठीक है, तुम नापसंदीदा अकल के हवाले हो जाओ। तो नापसंदीदा अकल रखने वाले लोग दूसरों को बेइज्जत करते हैं। जो दूसरों को बेइज्जत करते हैं, कभी ना समझे कि हम बड़े अकलमंद लोग हैं, हमारे अंदर बड़ी विजडम और इंटेलेक्ट है, जहानत है हमारे अंदर, हम बड़े सुपर माइंड लोग हैं। नहीं, दरअसल नापसंदीदा अकल रखने वाले लोग दूसरों को बेइज्जत करते हैं। सो जब आप किसी को बेइज्जत करें, तो जहन में रखिए कि आप खुद से अपना तारुफ करवा रहे हैं कि जी मैं अकल वाला नहीं हूं, बल्कि मैं तो बुरी अकल वाला हूं, मैं नापसंदीदा अकल रखने वाला हूं। बेतकाद लोग नबियों को बेइज्जत करते रहे। मसीह खुदावंद ने कहा कि नबी अपने वतन के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। अपने लोग जो एतकाद नहीं रखते, जो नबी पर ईमान नहीं लाते, मसीह खुदावंद को भी अपनों ने कबूल न किया। बेतकाद अपनों ने गैर कौम के साथ मिलकर यस्सू को बेइज्जत किया, यानी यहूदी कौम के सरदारों ने और यहूदी कौम के लोगों ने अपने सरदारों की पैरवी करते हुए मसीह खुदावंद के लिए गैर कौमों के साथ मिलकर बेइज्जती का पूरा बंदोबस्त किया। यीशु ने बता दिया था कि वो मुझे गैर कौमों के हाथ हवाले करेंगे और बेइज्जत किया जाऊंगा मैं, वो मुझे बेइज्जत करेंगे। मुझ समेत सबके सोचने का यह मुकाम है कि कहीं हम बाहर वालों के साथ मिलकर या गैर कौम वालों के साथ मिलकर अपनी कौम की रुसवाई तो नहीं कर रहे। या जिन वाकयात को हम समझते हैं ना, जी हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, सारी कौम की बेइज्जती हो गई, रुसवा हो गए, हमारी इज्जत चली गई। जरा गौर से देखें, अपने मिले होते हैं साथ रुसवा करने के लिए, जलील करने के लिए, और सारी दुनिया में पूरी कौम की रुसवाई हो जाती है। एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक जंगल में दरख्त भागते हुए आए अपने बुजुर्ग दरख्त के पास, जो उनका बड़ा बुजुर्ग था और अकलमंद था। उससे कहा कि बहुत सारे लोग हमें काटने के लिए आ गए हैं और उनकी गाड़ियों में कुल्हाड़े आ रहे हैं, काटने वाले औजार हैं। बुजुर्ग दरख्त ने कहा कि जाके देखो क्या उन औजारों में कोई दस्ता यानी लकड़ी का टुकड़ा है कि नहीं। कुल्हाड़ियों में दस्ता चाहिए, आरी में दस्ता चाहिए, काटने वाले औजार लोहे के हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए जो दस्ता चाहिए, जो उनके हैंडल्स होते हैं, वो लकड़ी के होते हैं। बुजुर्ग दरख्त ने कहा कि जाके देखो उनमें कोई दस्ता तो नहीं है, कोई लकड़ी का टुकड़ा बतौर हैंडल या दस्ते के नहीं है। देखने वाले आए और बताया कि उनमें कोई दस्ता नहीं है। बुजुर्ग दरख्त ने कहा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि तुम में से कोई उनका दस्ता ना बने। हमारी कौम और हमारे खानदान और हमारी जिंदगियों में तब तक कोई हमें रुसवा नहीं कर सकता जब तक कि कोई अपना साथ ना दे। सो बतौर पूरी मसीही कौम, एक पूरी कौम के तौर पर मसीहियों को, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हैं, यह सोचना है कि अपने गैरों के साथ मिलकर हमें जो रुसवा कर रहे हैं, हमें कहीं इसको रोकने की जरूरत है। और वो कैसे रोका जा सकता है? अपनों को मौका ना दें कि वो दूसरों से मिलें, और अपने जो दूसरों के साथ मिलकर हमें रुसवा करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि वो किन की रुसवाई करवा रहे हैं, किन को बेइज्जत करवा रहे हैं। अपनी कौम को अपनों की रुसवाई कर रहे हैं। सो ये तजुर्बा मसीह खुदावंद को है कि अपनों ने गैरों के साथ मिलकर मसीह को बेइज्जत किया। आज उसकी कौम के साथ भी यही हो रहा है, अपने ही दूसरों से मिलकर हमें रुसवा और बेइज्जत करते हैं। जो खुदा की तहकीर करते हैं उन्हें खुदा बेकद्र कर देता है। पहले हमने ये देखा कि खुदा इज्जत देता है और खुदा बख्शता है इज्जत, गैरों को भी देता है, गैर कौम में से लोगों को भी देता है और अपनों को भी देता है। और यह भी जहन में रखें कि रुसवाई और जिल्लत भी खुदा दे देता है जब हम खुदा को छोड़ देते हैं, जब हम खुदा की तहकीर कर देते हैं, जब हम उसे रद्द करते हैं। समूएल जब बच्चा था खुदा ने उससे कलाम किया और फिर उसकी बाबत बाइबल में बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है, जो किसी और की बाबत मैंने नहीं पढ़ी कहीं और। समूएल की पहली किताब 3:19 और समूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। जब हम खुदा की बातों को मिट्टी में मिलने ना देंगे, जब हम खुदा की इज्जत मिट्टी में मिलने ना देंगे, खुदा हमारी बातें और खुदा हमारी इज्जत भी मिट्टी में नहीं मिलने देगा। लेकिन जब हम खुदा को बेइज्जत करना शुरू कर देंगे, जब खुदा के लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर देंगे, खुदा के नाफरमान हो जाएंगे, तो फिर खुदा हमें छोड़ देगा कि हमारी भी कद्र जाती रहे और हम भी मिट्टी में मिल जाएं। बेतरबियत छोड़ी गई औलाद वालदैन को रुसवा करती है। मां बाप बड़ा लाड करते हैं अपनी औलाद से, हमने कभी इन्हें डांटा नहीं, हमने कभी इन्हें किसी बात से मना नहीं किया, बड़े प्यार से पाला हुआ है। इनकी साइकोलॉजी पे, नफ्सियात पे फर्क पड़ता है अगर हम डांटेंगे तो। हम इन्हीं के लिए कमाते हैं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, जो मर्जी करें, आपको इससे क्या। ऐसी बातें जो वालदैन करते हैं ना, वो अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते। जो औलाद बेतरबियत छोड़ दी जाती है ना, जिसको मां बाप कुछ सिखाते नहीं, जिसे मां बाप डिसिप्लिन नहीं करते, ट्रेन नहीं करते, फिर वो रुसवा करते हैं मां बाप को। बचपन में भी रुसवाई का सबब बन जाते हैं, देखा होगा आपने वाकयात, छोटी उम्र में बेटे और बेटियां मां बाप के लिए और फिर पूरी कौम के लिए कितनी बड़ी रुसवाई का सबब बन जाते हैं। تربیت دیں بچوں کو تاکہ وہ آپ کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ عزت ملتی کیسے ہے؟ خدا کی عزت کرنے سے عزت ملتی ہے۔ جو میری عزت کرے گا میں اس کو عزت دوں گا۔ خدا سے ڈرنے سے عزت ملتی ہے۔ خدا سے ڈریں، ڈرنا ایسا، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کی بات ماننا، اس کا روب ماننا، اس کا حکم ماننا اور اس کا اختیار ماننا۔ خدا کو پکارنے سے عزت ملتی ہے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے عزت بخشوں گا۔ زبور 91، مانگنی ہے عزت، دل کرتا ہے عزت پانے کا۔ خدا کو پکاریے، خدا کے ساتھ جڑیے، خدا سے رفاقت رکھیے، خدا کے قریب رہیں گے تو آپ کا دل خدا سے جڑ جائے گا، اور جب آپ کا دل خدا سے جڑ گیا آپ خدا کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، خدا آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ جو میری خدمت کرے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ خدا کی خدمت کریں، خدمت کے کئی طریقے ہیں، کئی زاویے اور کئی جہتیں ہیں، کوئی ایک ہی طریقہ تھوڑی ہے خدا کی خدمت کا۔ لیکن جو خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ اسی لیے جس کی خدا عزت کرے انسانوں کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ حکمت سے، کیونکہ حکمت کوچوں میں پکارتی ہے۔ جو مجھے پا لیتا ہے، جو میری سن لیتا، جو مجھے قبول کرتا اور میری پیروی کرتا ہے، میں اسے عزت بخشتی ہوں۔ بات کریں سوچ کر، سمجھ سے، حکمت سے، کام کریں حکمت سے تو عزت ملے گی۔ نیک سیرت سے، جن کا کردار خوبصورت ہوتا ہے، جن کا کریکٹر خوبصورت ہوتا ہے، جن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، نرم، بہت سلجھا ہوا، بہت شائستہ طبیعت لوگ جو ہوتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ جو اکھڑ مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں رہتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، کہتے ہیں اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑو اسے۔ فروتنی، عاجزی اور حلیمی سے، جن کے دل فروتن ہوتے ہیں، جو عاجز اور حلیم ہوتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں رسوا ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے تمثیل بھی دی، اگر کسی محفل میں جاؤ، کسی ضیافت میں جاؤ، کسی تقریب میں جاؤ، تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بڑی کرسی پر بیٹھے گا، ہو سکتا ہے کسی اور کو تجھ سے بھی بڑے کو بلایا ہو، اور پھر تجھے کہا جائے ذرا یہ جگہ چھوڑ دے، فلاں کو بلایا گیا ہے، وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے چھوڑ دو، تو پھر ہو گئی نا بے عزتی۔ سو اپنے آپ کو بڑا بنا کر کسی جگہ نہ پہنچو۔ حلیمی، عاجزی اور فروتنی سے چھوٹی جگہ پر، نچلی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو عزت ملے گی۔ آئیے، آپ کے لیے فلاں جگہ تیار کی گئی ہے، وہاں آ کر بیٹھ جائیے۔ صداقت اور شفقت کی پیروی کرنے سے، بائبل کہتی ہے جو سچائی کے پیچھے چلتے ہیں، جو سچ بات کہتے ہیں، اور جن کے اندر محبت بھری ہوتی ہے، جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے، محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، رحم ان کے دلوں میں ہوتا ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ جو کلہاڑوں جیسی زبان استعمال کرتے ہیں، جن کے رویے بڑے سخت کرخت ہوتے ہیں، وہ عزت کہاں پاتے ہیں۔ اور جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹی باتیں پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ پسند کرتا ہے۔ نیکوکاری میں ثابت قدم رہنے سے عزت ملتی ہے۔ بائبل نے صاف بتایا، وہ جو نیک کاموں کی فکر میں رہتے ہیں، وہ جو نقصان بھلے ہو جائے تو بھی اچھے کام کرنا نہیں چھوڑتے، خدا انہیں عزت دے دیتا ہے۔ آداب اور اتوار کا لحاظ رکھنے سے، محفل میں جاتے ہیں، سب سے بڑی اونچی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے اگلے صوفے عام طور پہ آج کل شادیوں میں، تقریبات میں لگائے جاتے ہیں، اگر ان پہ آپ بیٹھ جائیں جا کے کہ جی میں یہاں سب سے بڑا ہوں، تو جو شخص آپ سے مرتبے میں، مقام میں، حیثیت میں، عزت میں زیادہ سمجھا جاتا ہے، اگر وہ آ جائے تو پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا وہاں سے، تو آپ بے عزت ہو جائیں گے۔ پھر آپ ادھر ادھر دیکھو کہ کسی نے دیکھا تو نہیں کہ مجھے اٹھا دیا گیا۔ یہ مینرز ہیں، कहीं जाएं, इंतजाम करने वालों से पूछ लें कि मुझे कहां बैठना है, या जो सबसे पिछली नशिस्तें हैं, जगह हैं, सीट्स हैं, वहां बैठ जाइए। अगर आपके लिए मखसूस जगह रखी गई है या आपको सामने बुलाया जाना है, तो लोगों की मौजूदगी में जब आपसे कहा जाएगा कि आइए सर या मैडम, आपकी जगह वहां है, तो आपकी इज्जत होगी। सो मैनर्स अपनाइए, आदाब और अतवार अपनाइए। ये तौर तरीके हमारी जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए, आप जरूर इन्हें अपनाइए। पिछले वर्ष हमने कुछ बातें सीखी थी, किस तरह से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे मैनर्स अपना सकते हैं। तो मेल मुलाकात के आदाब भी उसमें हमने सीखे थे। अगर कोई दिलचस्पी रखता हो सारी बातों को सीखने में, तो YouTube पे वो मौजूद हैं सारे मैसेजेस। एक पूरी सीरीज है हमारी रोजमर्रा जिंदगी के बाइबली आदाब, तो उनसे इस्तफादा किया जा सकता है। सो आदाब और अतवार का लिहाज रखने से हमें इज्जत मिलती है, तरबियत और तंबीह का लिहाज रखने से। जो बातें अगर आपको सिखा दी जाएं कि आपने यहां बैठना है, आपने ये काम नहीं करना, आपने पिछली बार गलत किया था, अब ये ठीक होना चाहिए, अगर आप मिलने वाली सारी इंस्ट्रक्शंस या डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जो हिदायत मिलती है उन्हें फॉलो करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है या बता दिया जाता है, अगर आप पूरी तरह से उस पर अमल करते हैं, तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर कहीं पहले कोई नुकसान हो गया था, इज्जत खराब हुई थी, तो अब की बार वो सारे मामला दुरुस्त करने से और पूरी तरह से बातें फॉलो करने से इज्जत मिल सकती है। सो अगर कोई इसलाह करे, दुरुस्ती करे, तो उसे कबूल करे, वो आपकी इज्जत के लिए है। आका की खिदमत करने से, यानी बॉस की बात मानने से, जहां आप काम करते हैं, अपने से जो सुपीरियर हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, उनकी बात मानिए, उनकी खिदमत कीजिए, तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो आपको बेइज्जत करेंगे। आप काम करोगे, अच्छी तरह से करोगे, तो आपको इज्जत दी जाएगी, और मेहनत करने से इज्जत मिलती है। काम चोरों की इज्जत नहीं होती। किसी भी शोबे में है, किसी भी मामले में आप काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कीजिए, पूरी तवज्जो से करें, पूरी कोशिश करें। जब आप पूरा मन लगा देंगे, पूरे जी से काम करोगे, पूरी मेहनत करोगे, तो देखने वाले और जिनका काम किया जा रहा है, वो सब इज्जत करेंगे कि बहुत मेहनती है। कौम के एक शख्स को मिलने वाली इज्जत सारी कौम की इज्जत है। जिस तरह से हम समझते हैं ना कि भाई देखो फलां ने हमारी सारी कौम की बेइज्जती करवा दी, इसी तरह अगर किसी एक शख्स को इज्जत मिलती है, तो वो पूरी कौम की इज्जत होती है। सो ख्याल रखें इस बात का, अगर किसी को इज्जत मिल रही है ना, तो जैलस ना हो, जले नहीं, हसद ना करें, बल्कि ये समझें कि हमारे एक भाई या हमारी एक बहन को इज्जत मिल रही है, हमारे एक बुजुर्ग या नौजवान को इज्जत मिल रही है, हमारे बेटे या बेटी को इज्जत मिल रही है, हमें इज्जत मिल रही है, ये मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा खानदान है, क्योंकि मैं और ये सब मिलकर खुदा का खानदान है। दर्द होता है जिस्म के एक हिस्से में, तो सारा बदन तकलीफ सहता है। एक हिस्से को इज्जत मिलती है, तो सारे बदन को इज्जत मिलती है। जो खेलों में दौड़ने वाले इनाम पाते हैं, तो उनके पांव दौड़ते हैं, कदम वो अपने पांव से दौड़ते हैं, लेकिन उनको जब मेडल्स पहनाए जाते हैं, तो वो उनके गलों में पहनाए जाते हैं। पांव ने कभी नहीं कहा जी मुझे मेडल पहनाओ, दौड़ते पांव हैं, लेकिन मेडल्स गले में, सर्टिफिकेट या शील्ड या ट्रॉफी हाथों में, पांव को नहीं मिलते। लेकिन पांव इस बात पे खुश रहता है कि मैं उसी बदन का हिस्सा हूं जिसे इज्जत मिल रही है। सो हमारी कौम में, हमारे लोगों में, हमारे खानदानों में, हमारी बिरादरी में, अगर किसी एक शख्स को इज्जत मिल रही है, तो हम ये समझें कि हमें मिल रही है, और हम उसके खिलाफ साजिशें ना करें। इज्जत कैसे जाहिर होती है? दूसरों को खुद से बेहतर समझने से। यह मत कहें कि जी फला कौम नीच है, फला कौम बड़े खराब है, ये वाले लोग बड़े गंदे हैं, या ये शख्स बड़ा गंदा है। यह बहुत छोटा या नीच है। नहीं, आप दूसरों को छोटा जाहिर करते हुए खुद को छोटा बना रहे होते हो। जब आप दूसरों को बेहतर समझोगे, जब आप दूसरों को अपने से बेहतर जाहिर करोगे, उन्हें एहसास दिलाओगे कि आप मेरे लिए बहुत अहम हो, आप मेरे नजदीक बहुत ज्यादा काबिल इज्जत हो, तो आपकी भी इज्जत होगी और सामने वाले को महसूस होगा कि मेरी इज्जत की जा रही है। अवामी सतह पर ऐलान और इजहार करने से, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मेडल्स, ऑनर्स, अवार्ड्स, उनका ऐलान किया जाता है, अवामी सतह पर किया जाता है। स्कूल में जब बच्चे पोजीशन लेते हैं तो उनका पूरी क्लास में या स्कूल में अनाउंसमेंट होती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग फोटो डाल देते हैं, पता चलता है जी फलां बंदे ने पब्लिकली ये एजाज पाया है, उसे ये इज्जत मिली है, उसे ये शील्ड या सर्टिफिकेट या ऑनर उसको दिया गया है। सो अगर आप किसी की इज्जत करते हैं तो उसका पब्लिकली ऐलान करें, उसका अवामी सतह पर ऐलान करें, सबको पता चलना चाहिए। ये कोई इज्जत नहीं कि दिल में बड़ी इज्जत है और अगर कहीं मौका मिले उस शख्स की इज्जत जाहिर करने का और कहें नहीं जी हम नहीं जाहिर करते। पब्लिकली जाहिर करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जी हम बड़ी इज्जत करते हैं। बाज़ औक़ात इज्जत के इजहार के तौर पर पहनावा दिया जाता है, लिबास दिया जाता है, जेवरात दिए जाते हैं या कोई डेकोरेशन की आइटम्स दे दी जाती हैं, गले में हार डाल दिए जाते हैं, एजाज दे दिया जाता है। जो शादियों में मिलनियां होती हैं ना, दोनों तरफ से रिश्तेदार मिलते हैं और फिर लड़की वाले रिश्तेदार लड़के वालों को तोहफे देते हैं, एक्सचेंज नहीं होता कुछ भी बल्कि लिया जाता है। कितनी अच्छी बात हो कि मिलनियों में लड़के वाले भी अपनी तरफ से गिफ्ट्स लेकर जाएं कि अगर हमारे एक रिश्तेदार को गिफ्ट मिलेगा तो हम उसके बदले उनके रिश्तेदार को एक गिफ्ट देंगे, ताकि दोनों तरफ याद रहे कि जी गिफ्ट दिया गया है। इज्जत की जाती है तो पहनावे से, चीजों के दिए जाने से हम जाहिर करते हैं कि हम इज्जत करते हैं आपकी। बेटियां भी जब आती हैं ना घरों में तो हम उनको रुख्सत करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, उन्हें भी गिफ्ट दिए जाते हैं इज्जत की निशानी के तौर पर। अच्छी नशिस्त देने से, कोई हमारा बड़ा काबिल एहतराम शख्स आ जाता है जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसे सबसे अच्छी सीट ऑफर करते हैं कि आप यहां बैठिए। कलीसियाओं की बात करूंगा कि पादरी साहब कलीसिया में जब देखते हैं कि एक और खादम खुदा का मौजूद है और वो आए हैं, तो वो उनको इज्जत से सामने लाते और सबसे अच्छी जगह उन्हें बिठाया जाता है। बिशप साहब जब आ जाते हैं तो जो सबसे अच्छी चेयर होती है उस पर बिठाया जाता है। शादियों में तकरीब में दुल्हा को सबसे अच्छी जगह पर निश्चित पे बिठाया जाता है, सेंटर स्टेज पे, और वो भी सेंटर वाली सीट पे। तो हम ये इज्जत जाहिर करते हैं। कभी कहीं देखा किसी ने कि दूल्हे को आखिरी सीट पे बिठाओ, यहां बैठा रहा? नहीं, जब किसी की इज्जत जाहिर करनी होती है उसे अच्छी सीट ऑफर की जाती है। इख्तियार देने से, अथॉरिटी दे दी जाती है कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम इस इज्जत का इजहार यूं करते हैं कि हम अपने मामलात का इख्तियार आपके हाथ में देते हैं, आप हमारे इन मामलात का ख्याल रखें और आप अथॉरिटी रखते हैं। बाज खानदानों में जब या बिरादरियों में मामलात बिगड़ जाते हैं तो उनमें किसी बंदे को जो दोनों तरफ के लिए बड़ा मोतबर होता है, साहिब इज्जत होता है, उसे इख्तियार दे दिया जाता है, जी जो आप करो हमें कबूल। फर्मा बरदारी से जब हम किसी की बात मानते हैं, किसी का हुक्म मानते हैं, हम ये जाहिर करते हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम अपने टीचर की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन कभी हमने उनकी बात नहीं माननी, ना क्लास में चुप करना है और ना हमने होमवर्क करना है, ना हमने टेस्ट में अच्छा रिजल्ट शो करना है, हमने कोई बात माननी नहीं, तो इज्जत कहां है? जिसकी इज्जत करते हैं उसकी बात मानी जाती है और फर्माबरदारी से, सबमिशन से, ओबीडियंस से जाहिर किया जाता है कि हम इज्जत करते हैं। दूसरों के फायदे और जरूरत का ख्याल रखते हैं। खुदा यसु ने कहा कि यह क्या बात हुई कि जिस चीज की मां बाप को जरूरत हो कहना वो तो हमने खुदा के घर में दे दी, अब हम आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। ये कोई इज्जत नहीं है। इज्जत यह है कि जिसकी जो जरूरत है वो पूरी की जाए। आपके बस में है किसी का ख्याल रखना, आप उसका ख्याल रखो। ये इजहार है इज्जत का, ये नहीं है ओहो मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूं, आपसे प्यार बहुत है, लेकिन मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस में भी है और नहीं करना, तो ये बेइज्जती करना है। इज्जत ये है कि आपके बस में है दूसरों को फायदा देना, उनकी जरूरत का ख्याल रखना, तो आप जरूर करें। इज्जत खत्म कैसे होती है, अब ये भी है, हम इज्जत खुद गंवा देते हैं। कैसे? हिमाकत से, बेवकूफियां करके, बेवकूफी से बोलना, बेवकूफी से काम करना, बेवकूफी से बर्ताव करना। सो हम अपनी हिमाकत से, बेवकूफियों से, स्टुपिडिटी और फुलिशनेस से हम इज्जत खो देते हैं, अपनी हदूद से तजावज करने से। जो मेरी अथॉरिटी है, जो मेरी बाउंड्री है, जो मेरी हद है, जब मैंने उससे आगे कदम बढ़ा दिया तो फिर मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। जिन मामलात में मेरा हक नहीं है उनमें मैं बिल्कुल टांग ना अड़ाऊं। बादशाह ने बखूर जलाने की नादानी की थी तो उसे सुनना पड़ा कि तूने अपनी हद से तजावज किया है, इसलिए खुदा तुझे बेइज्जत कर देगा, इसलिए तुझ पर रुसवाई और जिल्लत आएगी। खुदा की तहकीर करने से खुदा ने खुद कहा कि जब तुम मुझे हकीर जानोगे, जब तुम मेरी हकारत करोगे, मुझे मेरी तहकीर करोगे, तो मैं तुम्हें बेकद्र कर दूंगा। काहिन और बुजुर्गों की इज्जत ना करने से, नोहा की किताब में लिखा है कि हम पर रुसवाइयां आई, मेरे लोगों पर रुसवाइयां आई, जलील और रुसवा हो गए, क्योंकि इन लोगों ने, मेरे लोगों ने, इसराइली कौम ने, यहूदी कौम ने अपने काहिनों और कौम के बुजुर्गों को रुसवा किया, उनकी इज्जत ना की। जब हम बुजुर्गों की, सरदारों की इज्जत नहीं करेंगे तो वो पलट के हमारे ऊपर आएगी, हम भी इज्जत खो देंगे। इज्जतदारों को बेइज्जत करने से हमारी इज्जत चली जाती है। जब हम दूसरों को बेइज्जत करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, दरअसल हम अपनी बेइज्जती करवा रहे होते हैं। जिसे खुदा ने इज्जत दे दी है उसे आप बेइज्जत ना करें। खुदा ने कहा है हर कोई दूसरे की इज्जत करे। जब आप दूसरों को बेइज्जत करेंगे तो आप भी दूसरों को हक दे रहे हैं कि वो आपको बेइज्जत कर सके। झगड़ा करने से लोग बेइज्जत होते हैं। झगड़ा करने वाले ये मत समझे कि हम बड़े जोरावर हैं और लोग हमसे डर जाएंगे, नहीं, आपकी इज्जत चली जाती है। सो मामला कोई भी है, बैठ के आराम से मोहब्बत से सुलझा लें, झगड़ा ना करें। रयाकारी करने से बेइज्जती होती है। ये उम्मत, ये कौम, ये लोग जुबान से तो मेरी इज्जत करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। खुदा भी ऐसे लोगों को जलालत और रुसवाई और शर्मिंदगी के लिए छोड़ देता है जो सिर्फ मुंह से खुदा की इज्जत करते हैं, दिल से नहीं करते। हमें भी जब पता लगे कि ये लोग ऐसे ही हमारे पास मुंह मुंह से कहते हैं कि जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, और जब मौका मिले तो सबसे ज्यादा जलील यही करते हैं, तो हम क्या इज्जत करेंगे उनकी? क्योंकि हमें उनकी असलियत का पता चल जाता है कि ये लोग सिर्फ मुंह से बातें करते हैं, ये हकीकत में इज्जत नहीं करते। सो दिखावा करने वाले भी अपनी इज्जत खो देते हैं। जो नाटक करते हैं ना, जो सिर्फ ड्रामा करते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, लोग उनकी हकीकत जानने के बाद उनकी इज्जत नहीं करते और दूसरों से वैसा ही सलूक करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें तो आप भी लोगों की इज्जत करें। आप चाहते हैं कि लोग आपको बेइज्जत ना करें तो आप भी दूसरों को बेइज्जत ना करें। आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत ना उछाले तो आप भी किसी की इज्जत ना उछालें। आप चाहते हैं कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी बन गई है जिसमें आपको रुसवाई और जिल्लत का सामना हो सकता है और वो बात छुपाई जाए, उसे अवाम में नशर ना किया जाए, तो आप भी दूसरों के बारे में इसी तरह से रवैया रखिए कि आप भी किसी की रुसवाई का सबब ना बने। आप अपनी कौम की रुसवाई के लिए दूसरों से ना मिलें। इज्जत करें तो इज्जत मिलेगी, खुदा की इज्जत करेंगे खुदा आपकी इज्जत बढ़ा देगा, खुदा की तहकीर करेंगे खुदा आपको बेकद्र कर देगा। खुदा की इज्जत करना शुरू करें, खुदा आपकी इज्जत बढ़ा देगा। खुदा की बातों को इज्जत देना शुरू करें, खुदा आपकी बातों को इज्जत दे देगा। खुदा के खानदान को इज्जत दे, खुदा आपके खानदान को इज्जत दे देगा। खुदा के लोगों को इज्जत दे, जिन्हें आप अपने लोग कहते हैं खुदा उन्हें इज्जत देना शुरू कर देगा।